بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. This conference is being recorded.
جی میوٹ کریں سب لائنز پر. انشاء چلیں شروع کریں.
All callers are muted and they can unmute themselves.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من
الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. آج انشاءاللہ تعالی ہم ریویو کرنے سے پہلے ایک ٹیسٹ کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں. لاسٹ آپ لوگوں کا ٹیسٹ کہاں تک ہوا تھا اور کتاب المساقات ہو گئی تھی؟ کتاب المساقات بیل ٹاک پہ ذرا لکھ دیں. نہیں ہوا. اچھا, اور پچھلی بک کا تو ہم نے پورا مکمل کر لیا نا, رائٹ؟ پچھلی بک ختم ہو گئی تھی, ایسا ہی ہے. ہاں, کتاب البیوع بھی نہیں ہوا, رائٹ, بالکل. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اس سے یعنی کتاب البیوع رہ گیا ہے ابھی, کیونکہ میرے پاس پچھلی بک نہیں ہے سامنے. اس لیے پچھلی بک کا مجھے بتائیں کہ اس میں سے کتنے چیپٹر رہ گئے ہیں. کتاب البیوع صرف رہ گیا. تو کتاب البیوع, کتاب المساقات, اور نہیں بس یہاں تک کتاب البیوع اور کتاب المساقات کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اکٹھا یہ کریں گے کتاب الفرائض, کتاب النظر اور کتاب الایمان. ہم انشاءاللہ یہ اکٹھا کریں گے کیونکہ کتاب البیوع تھوڑا سا ذرا ٹیکنیکل ہے, تھوڑا سا ذرا اس میں ذرا آپ کو محنت کرنی پڑے گی, تو اس لیے کتاب الوراثت, نہیں وراثت تو کتاب الفرائض میں ہی آ گیا نا, میراث کے مسائل وہ ہم بعد میں کریں گے. تو آپ یہ دو چیپٹر کتاب المساقات اور کتاب البیوع, اس کے بعد ہم اسی بک میں آ جائیں گے, رائٹ؟ پچھلی بک کا تو کچھ اور نہیں رہ گیا نا. دیکھیں اگر پچھلی بک کا کچھ رہ گیا تو وہ مجھے بتا دیں. میرے سامنے نہیں ہے کتاب المساقات اور بیو. پچھلی بک میں سے میں پوچھ رہی ہوں, اونلی بیو. ٹھیک ہے, مساقات اور بیو کا ٹیسٹ انشاءاللہ تعالی آپ کا 2 weeks میں ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی آج منڈے ہے تو 6 فیبرری کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, 6 فیبرری کو آپ کا کتاب البیوع کا ٹیسٹ ہے. اس کے بعد ہم جلدی جلدی نکالیں گے, پھر اس کے بعد 2 weeks کے بعد آپ کا اگلے 3 کا ہوگا. نہیں پھر ہم نے آگے بھی جانا ہے نا, آگے بھی یہ اگلے بھی کرنے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اب ہم ساتھ ساتھ چلیں گے, جو ہی ختم ہوا کرے گا ساتھ ہی ٹیسٹ کریں گے. تو یہ ذرا تھوڑا پائل اپ ہو گیا, اب 2 weeks میں اس کو کوشش کے ساتھ نکال دیں. اس کے بعد اگلے 2 weeks کے بعد آپ کے ان 3 ٹیسٹ چیپٹرز کا ٹیسٹ ہوگا, جو کتاب النظر اور فرائض اور یہ ہے سب. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی. چلیں اب اس کے اوپر ہم اور نہیں ٹائم ویسٹ کرتے کیونکہ ہمارا آلریڈی بس 6 تاریخ بن رہی ہے, نہیں ہاں 6 تاریخ کو, 6 فروری کو انشاءاللہ تعالی منڈے ہے آپ لوگوں کا. یہ 2 چیپٹرز کا ہی صرف اس لیے میں دے رہی ہوں آپ کو, زیادہ نہیں ہے. ان 2 چیپٹرز کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا. چلیں جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا, غلام کو اپنے جیسا کھلانا پہنانا اور زیادہ بوجھ نہ ڈالنے, کافی بات کی تھی کہ جب اس کو کوئی آپ زیادہ مشکل کام, مشقت والا کام, بہت محنت والا کام دیتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر لگ کے کام کرا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ کرانے کا حکم ہے. ٹھیک ہے, اس کو اس کے اوپر بہت زیادہ اتنا بوجھ ڈال دینا تو خود ہی کرے, اور چاہے سارا دن لگا رہے, 2 دن لگا رہے, وہ بس مطلب اس کو پرواہ نہ کرنا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, پھر ساتھ خود بھی لگنا چاہیے. तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अमल की बात है इसके अंदर और बहुत याद रखने की बात है इसमें। अच्छा अब हम ये ना सोचें कि ये तो चूंकि गुलाम का जिक्र है तो इसलिए हमारा नहीं है इसमें कुछ भी, जो गुलाम है वो तो बल्कि ज़्यादा उनके हकूक सल्ब किए जाते थे, हकूक नहीं होते थे, नौकर तो फिर भी जो आजकल आपके हैं वो फिर भी आज़ाद हैं। अच्छा अब यहाँ से शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी कुलसुम आप बताएंगी कि जो गुलाम अल्लाह की इबादत भी करे और अपने आका की भी खैरखाई करे उसके लिए क्या है?
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
जी उसके लिए डबल उसका यानी दुगना उसको सवाब मिलेगा ना?
ठीक है। और क्या जो अगली थोड़ी सी देखेंगे 108 हदीस, इसके अंदर हम दो बातें देखते हैं। एक तो बात पहली है कि जिसमें गुलाम किसी की मिल्कियत में हो और उस वो नेक भी हो तो उसको दोहरा अजर मिलता है, लेकिन जहाँ पे आगे आ जाता है कि मैं गुलाम रह के मरना पसंद करता हूँ, ये क्या है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी?
नहीं, ये हजरत अबू हुरैरा के यहाँ पर बात है, क्योंकि इससे हमें दलील मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नबूवत के खिलाफ है, एक तो गुलामी और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा जो है वो बचपन में ही फौत हो गई थी, तो इससे पता चलता है कि ये आपकी बात नहीं है, ये हजरत अबू हुरैरा की यहाँ पर बात है।
बिल्कुल सही। और दूसरे ये फिर हमने ये भी बताना है इसमें कि मुस्लिम में जो हदीस है उसमें खास तौर पे हमें ये पता चलता है कि ये कॉल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं, क्योंकि ताबीन में से एक ने इस हदीस को रिवायत करते हुए ये बताया कि अबू हुरैरा ने फरमाया। तो ये भी एक तीसरी दलील लिख लें इस चीज़ सिलसिले में। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अच्छा जी अगर दो मालिक हों और उनका एक मुश्तरका गुलाम हो तो एक मालिक ने उसमें से गुलाम को आजाद कर देने का फैसला कर लिया, तो अब क्या इसमें सिलसिला होगा आगे? सबात आप बताएंगी।
जी तो चाहिए कि दूसरा भी आजाद कर दे, अगर वो नहीं कर सकता हो तो इसी को कुछ अरेंज करना होगा, या तो ये उसका हिस्सा अदा कर दे, अदरवाइज ये अपना छोड़ दे और वो जो गुलाम है वो खुद मेहनत मजदूरी करके अपने आप को आजाद कराने की कोशिश करे।
यानी क्या फिर लाजिम है कि वो गुलाम आजाद ही हो? क्या लाजिम है ये?
जी लाजिम है, अगर एक ने कर लिया तो आजाद। जी लाजिम है।
शाबाश, ठीक है बिल्कुल। कि अब जो है ना वो गुलाम नहीं रह सकता अगर एक ने भी आजाद कर दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे गुलामों के कितने हकूक बताए गए हैं और कितनी ज्यादा उनको उनकी आजादी के लिए यानी इंसेंटिव भी दिए गए हैं, उनकी आजादी का कितना आसानी भी करी गई है। इससे पता चलता है कि जो लोग हर वक्त ये तराज करते हैं जी गुलामी के ऊपर क्यों, मतलब इसको कंडेम करके इसको हराम क्यों नहीं किया इस्लाम ने या कुछ है, तो एकदम उस माशरे में इस तरह से आजाद नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस चीज को इतना प्रमोट किया गया कि एक ने भी देखे अगर आजाद कर दिए तो उसको आजाद होना ही होना है, चाहे उसको आप कहें कि वो जाके अपनी कीमत पूरी कर दे, अदरवाइज दूसरा वाला भी आजाद करे। मतलब कि डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर हम देखते हैं कि बस उसकी आजादी अब लाजिम हो गई है। तो ये फिर वला का जो रिश्ता है उसके सिलसिले में भी एक उसको इंसेंटिव दिया गया जो मालिक है, फिर उसके बाद इनके हकूक को इतनी प्रोटेक्शन दी गई कि कोई इसके ऊपर तोहमत नहीं लगा सकता, कोई उसके ऊपर और इतना बोझ नहीं डाल सकता कि इतना बोझ डाल दे कि बेचारे के लिए मुश्किल हो वो काम करना भी। फिर हमें ये भी पता चलता है कि किस तरह से उसको खिलाने पिलाने में मतलब अपने जैसा करना, ये जरूरी नहीं कि आप जो प्रिंट आपने पहना वही उसको पहनाए, मगर ऐसे नहीं हो सकता कि आप उनको बिल्कुल ही ऐसे छोड़ दें और खुद अच्छे पहनते रहें और उनके कोई ख्याल ना करें, या खुद खाते पीते रहें गोश्त खाएं और उसको बिल्कुल ऐसे छोड़ा हुआ। तो इन चीजों को इस्लाम ने देखें कैसे उनका तहफ्फुज़ किया, हमारे लिए इसमें भी सीखने का बहुत सी इसमें बातें हैं। अच्छा और किसकी बारी लास्ट टाइम रह गई थी? अच्छा राहत आप बताएंगी कि यहाँ पे कहा गया कि मुदब्बिर की बै दुरुस्त है, इसका क्या माना है?
इससे ये है कि जब अगर गुलाम है जैसे, तो उसके वो ब्याह का दुरुस्त है कि अगर वो फौत भी हो जाता है, जब उसके पास कोई माल नहीं होता, तो उसे फिर भी कह लो कि आजाद किया जाए। जैसे इसमें बताया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब इतला मिली थी कि एक गुलाम, मैं गुलाम खरीदता तो नहीं बिन नजाम में रजी अल्लाह तआला ने 800 दरम लेके हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खरीद लिया था अपने गुलाम को। तो उसे ये इतला मिलती है कि आजाद करना बहुत जरूरी है गुलाम को। उसे ये नहीं कि अपने अपनी विरासत में उसको वारिस बना के तो अपने पास ही रखा जाए। उसकी मौत के बाद का भी मतलब, अगर जो मालिक है अगर वो मर जाता है तो उसके बाद उसको ब्याह से मना किया गया है क्योंकि उसको आजाद कर दिया जाए।
हाँ, असल असल ये बात है, ठीक है, असल ये बात है। अच्छा, थोड़ा सा इसको जरा बेहतर एक्सप्लेन करेंगी ये यास्मीन इकबाल जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह
जी। इसका जैसे उन्होंने बताया यही तरीका कि गुलाम को आप वो जैसे एक आदमी मर गया तो वो उसको ये नहीं कि मैं मर गया मेरे पास गुलाम है तो वो दूसरे मेरी औलाद उसको एज अ गुलाम ट्रीट करे, तो उसको जब इस तरह हुआ था तो नबी के सलाम को 800 दरम दे के आजाद करवा दिया। मतलब गुलाम दर गुलाम तो नहीं रहेगा ना, वो अगर मालिक मर जाता है।
ठीक है जी, फरजाना चौधरी आप बताएंगे इसको। वालेकुम अस्सलाम।
इससे ये था ना कि ये उसके पास कोई माल ही नहीं है, जब वो 1/3 से ज्यादा तो अपना माल मरने के बाद तो हमारे अपनी मर्जी कर ही सकते, उसके पास एक गुलाम ही था। तो फिर मतलब बादशाह को आप मतलब कुछ ना कुछ दे के जाते हैं ना
जी,
वो उनका हक है।
ठीक है, ठीक है, उनका हक है। तो अगर अगर बहुत कुछ है उसके पास और ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं उसने छोड़ा, तो फिर
जी फिर उसको आजाद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में काफी तो बहुत अच्छा है, उसके जैसे फजाइल भी हैं और उसके बाद भी वो कर सकते हैं, मरने के बाद भी कर सकता है।
अच्छा ठीक है, मैं इस बात को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोगों ने कोशिश तो की है मगर कुछ टू द पॉइंट आप लोगों की बात नहीं है अभी तक भी। ये इस सूरत में बात हो रही है कि कोई ये वजह जाता है कि मेरे मरने के बाद ये गुलाम आजाद है, ठीक है, कि मैं मतलब जिंदगी में ये नहीं कहा कि जरूरी है इसको आजाद करना, कोई वो है वो है और विरासत में नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता, इसका कोई इस चीज से ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ ये है कि कोई मसलन वसीयत कर जाए कि मेरी जिंदगी के बाद, अभी तक तो तुम गुलाम हो, मेरे फौत होने के बाद ये आजाद है, ठीक है। अब उसके अंदर देखा जाएगा कि जो आदमी छोड़ के जा रहा है अपनी विरासत, क्या इसकी विरासत में यही गुलाम था और इसके सिवा कुछ नहीं है। अगर सिर्फ यही गुलाम था और इसके सिवा कुछ नहीं है तो फिर वो अपने वारसों के लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ के गया, फिर इसके वारसों को ये गुलाम मिलेगा। फिर ऐसे नहीं कर सकते कि जो है कुछ भी नहीं अपने वारसों के लिए छोड़ गए और जाते जाते ये भी कह गए कि जी मेरा गुलाम भी जो है वो भी आजाद है मेरे बाद, तो वारिस क्या खाली हाथ देखेंगे? आपको ये हमने पहले पढ़ा था ना कि वसीयत एक तहाई से ज्यादा नहीं कर सकते, तो इसका तो कुल माल ही ये गुलाम है, ठीक है। हाँ, अगर उसके पास और कुछ बहुत कुछ है, बहुत सारी जायदाद है और एक गुलाम भी है, तब वसीयत कर सकता है कि हाँ भाई ये आजाद होगा मेरे बाद, जैसे कि हम किसी भी चीज के लिए 1/3 के लिए कर सकते हैं। तो आप गुलाम को भी ऐसे समझे ना कि उस जमाने के अंदर यही था, जैसे गुलाम जायदादें हैं, जमीनें हैं, जैसे गाड़ियां हैं, जैसे आपकी आज सवारियों के और मीन्स हैं, घोड़े ऊंट होते थे, इसी तरह इंसान भी होते थे, गुलाम जो होते थे। तो यानी वो अगर कहता है कि मेरी जिंदगी तक तुम गुलाम, मेरे मरने के बाद तुम आजाद हो, तो वो उसी सूरत में हो सकता है जब के उसकी और भी जायदाद हो। अगर उसकी और जायदाद नहीं है तो फिर ये गुलाम को इस तरह की उसके लिए वसीयत करके नहीं जा सकता, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इसको खरीद लिया था, जो यहाँ पे आता है 800 दिरहम में इसको खरीद लिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो वो इसीलिए आता है क्योंकि ये वो अगर कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने इस गुलाम को जो है ना मतलब आजाद कर दिया ऐसे ही बस, ठीक है। अच्छा जी, अब राफिया आप बताएंगी किताबुल कसामा क्या है?
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
कसामा क्या है? जी कसामा वो है जो किसी शख्स का कत्ल हो जाए और उसके लिए यानी कि महल्ले वालों पे नाम आ जाए, किसी खास शख्स पे नाम नहीं आता है, इससे किसी महल्ले वाले या किसी शहर वाले या किसी गांव वालों के ऊपर जो जिसका इल्जाम लग जाए, तो ये फलां महल्ले वालों ने इसका इस शख्स का कत्ल किया है,
ठीक है,
तो ये है कसामा। और इसमें ये होता है कि मकतूल के जो लोग होते हैं वो 50 आदमी मिलकर के कसम उठाएंगे कि इस गांव वालों ने इस शख्स का कत्ल किया है।
ठीक है ठीक है, शाबाश शाबाश। अच्छा जी बिल्कुल सही। अच्छा वो गांव वाले कसम उठाएंगे कि इसने इसका कत्ल किया, ठीक है। नाज़नीन आप बताएंगी कि उसके बाद अगर गांव वालों ने कसम उठा ली है तो अब क्या होगा?
वालेकुम
अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
गांव वालों ने कसम उठा ली है कि उन्होंने नहीं किया कत्ल, ये कह रही है ना आप?
नहीं ये कह रही हूँ कि वो रस कह रहे हैं कि इन्होंने कत्ल किया।
अच्छा तो फिर वो दियत देंगे ना?
अच्छा वो दियत देंगे, कौन देंगे?
जिनके खिलाफ मतलब जो इल्जाम लगाया गया है।
अच्छा और अगर वो कहते हैं कि हमारे नहीं, हमने नहीं किया,
अगर वो कहते हैं कि हमने नहीं किया मतलब वो पूरे गांव वाले कह रहे हैं कि हमने नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया जाएगा। नहीं यही बताया था कि अगर वो लोग भी कसम खा ले कि हमने नहीं किया है तो फिर नहीं होगी दियत।
हाँ तो यानी उनको क्या करना पड़ेगा फिर?
उनको भी कसम खानी होगी ना।
अच्छा कितनी, क्या कसम खानी होगी, कितने लोग?
50 लोग से ज्यादा को कसम खानी होगी कि हमने नहीं किया।
50 लोग कसम खाएंगे कि हमारी बस्ती में से कोई नहीं था जिसने ये काम किया, तो तब ऊपर से उठेगी, उससे अलावा नहीं उठेगी कि ऐसे फिर कुछ नहीं नहीं होगा। फिर वो उनके ऊपर उनको दियत अदा करनी होगी, अनलेस वो कसम उठा लें तो फिर उनकी दियत से फरागत हो जाएगी, फिर वो उनको दियत नहीं अदा करनी होगी, ठीक है।
तो ये झूठी कसम नहीं उठा सकते ये लोग?
ये इसी बात की तरफ में आने लगी थी कि देखें यहाँ से हमें पता चलता है कि वो जो हमने पहले बात की थी ना, इतनी स्वेयर इस तरह की बात के झूठी कसम खाना कितना कबीरा गुनाह है, झूठी कसम के ऊपर कफारा भी नहीं है, झूठी कसम ऐसी है उसके ऊपर माफी, तो यहाँ से पता चलता है कि इस एक इस्लामी माशरे में लोगों को कैसा होना चाहिए और उनको कसम उठाने के ऊपर कितना ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए कि ये बहुत बड़ी चीज है वो कर रहे हैं। हमारी तरह नहीं कि दिन रात हमारे यहाँ तो कसमें खा जाती है, कसम खुदा की, हमने तो खुदा की कसम ने नहीं किया, मुझे मेरे बच्चे की कसम, मुझे फलां की कसम, मुझे कुरान की कसम, मुझे अल्लाह की कसम, यानी रसूल की कसम, हर एक चीज की कसम खा के इतना मामूली इसको समझा जाता है। कसम खाना तो कोई बात ही नहीं है, वो तो आराम से कसम खा लेंगे, तो यानी ये देखें ये आम लोगों की बात नहीं हो रही, ये एक इस्लामी माशरे की बात है। और यहाँ से पता चलता है कि एक इस्लामी माशरे के अंदर लोग अफराद कैसे होंगे जिनको समझ होगी कि कसम क्या चीज है। 50 लोग कट्ठे मिलके कसम खाना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो 50 क्या, 50,000 लोग ला सकते हैं आप जो आराम से कस्में खा लेंगे झूठी। आप अपनी अदालतों में देखिए रोज झूठी कस्में होती हैं, पैसे पे करते हैं और झूठे गवाह ले आते हैं और गवाहियां बिकती हैं, पैसे दे के बिकती हैं गवाहियां। तो यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये माशरा कितना खूबसूरत माशरा होगा जिसके अंदर हर एक बंदे को एहसास है कि मैं जो कसम खाने जा रहा हूँ ये बहुत बड़ी चीज है और अल्लाह की कसम छोटी बात नहीं है, तभी तो ऐसा होगा। वरना तो रोज इस तरह की चीजें तो आप अपने माशरों में ही देखते हैं, तो वरना तो इस तरह की चीजें तो चलती रहेंगे, तो फिर कोई बात ही है। इसीलिए तो अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाया जाता है, किसी को कहते हैं हुक्मों का मजाक उड़ाना, ये मजाक है, ठीक है। नहीं वो व्हाट इफ ही डजंट नो की बात नहीं, अगर उनको ये पता हो तो तभी वो कसम खाएंगे, यानी अगर उनको ये नहीं पता उन बस्तियों को तो वो कसम नहीं खाएंगे, फिर वो दियत अदा करेंगे कि मसलन है कि हमारे जो जो भी हमारा हमारे इलाके का है, हमारी बस्ती का है, हमारी जगह का है, यहाँ पे वाकई कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने ये कत्ल किया होगा। दे शुड इन्वेस्टिगेट, दे शुड नो। अगर इन्वेस्टिगेशन करके, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कभी हो सकता है कि जी कोई हो लेकिन उनके इल्म में नहीं, और उन्होंने पूरा अपना तसल्ली कर ली और उसके बाद उठाइए दम फेरे, तो अल्लाह के ऊपर है कि वो तो इनोसेंट है, उनको नहीं पता था। अदरवाइज फिर जो है उनके, यानी अगर वो वाकई जानते बूझते इस तरह कर रहे हैं और उनको पता है, तो फिर तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। आप सोचे ना कि फिर क्या उस बस्ती के ऊपर हालात हो जो झूठी कसम खाने में इतने सारे अफराद हो। और कियामत की निशानियों में से आपको पता है ना कि खाल खाल दूर दूर कोई एक होगा बंदा जो ईमानदार होगा, जिसके बारे में कहा जाएगा वो फलां बस्ती में ना फलां एक ईमानदार इंसान है। इतनी ईमानदारी खत्म हो जाएगी। ईमानदारी नहीं तो कस्मों में भी ईमानदारी नहीं रहेगी, तिजारत में भी नहीं रहेगी, कोई सौदेबाजियों में उसमें भी नहीं रहेगी। वो ऐसे लगता है जैसे वो वक्त अब आ गया। आप देखिए लोगों को ढूंढते हैं अपने बिजनेस के लिए, कोई ईमानदार शख्स तो मिलता ही नहीं हमारे मुल्कों में। हमें हमारे माशरे, इस्लामिक माशरे अपने आप को कहते हैं, कितना काम करने की जरूरत है हमें, कितने हमें अपने कैरेक्टर बिल्डिंग की जरूरत है। पूरे माशरा जो है ना करप्ट हो चुका है। हम बहुत शिकायतें हमारे यहाँ होती हैं, किसी की भी, मैं किसी के साथ नहीं देती, लेकिन बहुत शिकायतें होती हैं जी ये दफ्तरों के अंदर, सरकारी दफ्तरों के अंदर करप्शन है, हुक्मरान करप्ट हैं, ये महकमा करप्ट है, वो करप्ट है। लेकिन अगर आप गौर करें तो सारा माशरा करप्ट होता है और हर हर बंदा अपनी जगह करप्ट है। और ये भी एक करप्शन की किस्म होती है, जबकि कसमें झूठी उठाई जाए और इस चीज के ऊपर कोई भी नदामत ना हो किसी को। तो ये आपको यहां से पिक्चर नजर आई कि इस्लामी माशरा कितना खूबसूरत होगा, जिसमें 50 लोग ये जानते हैं कि हमने जो कसम उठानी है वो कैसी कसम हो कि जिसके अंदर कोई झूठ ना हो। अच्छा अब क्या होगा, अब जब वो भी नहीं दिया दे रहे, अब तो ये, अब ये जो मजलूम इंसान है यानी जो मकतूल के वरासा हैं, वो बेचारे आप क्या करें फिर? नफीसा शेख, आप बताएंगी कि वो क्या करें? जी नफीसा, वालेकुम
अस्सलाम
सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी
जी अगर उन्होंने भी पूरे 50 लोगों ने कसम खा ली है कि उन्होंने कत्ल नहीं किया, तो फिर जो जिनके जो हकूमत है वो फिर उनकी दियत अदा करेगी ना।
शाबाश, ठीक है, बिल्कुल। वो बैतुल माल से, यानी ये नहीं है कि चलो जाओ अब तुम्हारे खलासी, अब तो उन्होंने भी कसम खा ली है तो अब तुम्हारा कुछ नहीं, वो बेचारे रोते फिरें जहां मर्जी घूमे। नहीं, फिर अब बैतुल माल से या जहां से अब हुकूमत अंदर आएगी फिर वो देगी। और ये जो बस्ती वाले कसम खा रहे हैं ना, वो ये नहीं कसम खा रहे सिर्फ कि हमने नहीं किया, वो कह रहे हैं हमारी बस्ती में से किसी ने नहीं किया। डिड नॉट स्वेयर बिकॉज दे वर नॉट श्योर। हाँ, तो फिर तो इस चीज का वो, ये यहाँ पे सिर्फ वो वाली बात हो रही है, यहाँ पे और नहीं बात हो रही। यहाँ पे वो वाली बात हो रही है जब उनको ये, यानी पता है कि ये इसी बस्ती से कत्ल हुआ, ये तब की बात हो रही है। ठीक है, ये आम हालात की बात नहीं कि, और पता ही नहीं है तो ये नहीं है कि जरूरी किसी काम लगाना, समझ आई? अच्छा, और कौन है, राशिदा कालिया, आप बताएंगी कि कत्ले अमद क्या होता है? वालेकुम
अच्छा
अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
कत्ले अमद होता है जो जानबूझ के किया जाए, जिसमें पूरी इरादा और नीयत के साथ किया जाए,
ठीक
और
है,
उसकी फिर कसास भी होता है, उसका कसास होता है यानी जान के बदले जान,
शाबाश।
मान के मतलब कान के बदले कान, इस तरह।
और इसके कसास का जिक्र कहाँ है?
सूरह माईदा में आया है,
सूरह बकरा में आया है, ठीक है,
सूरह
सूरह
बकरा
बकरा
में
में
आया है
आया है
ना।
किसास का जिक्र। और अगर किसास से जान छूट कैसे सकती है किसी की, अगर किसास से कोई जान छुड़ाना चाहे तो कैसे छूट सकती है? कोई सूरत है ऐसी कि किसास ना उनको देना पड़े?
हो सकता है इसके बदले जो
किसास खून
दिए
बहा,
कुछ।
खून बहा उस सूरत में है जब, ये बताएंगे? यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि खून बहा फिर मतलब कब, कैसे किसास खून बहा में कैसे चेंज होगा? खुद ही उनकी अपनी मर्जी से कि हमारा दिल चाह रहा नहीं अब किसास नहीं, वो तो किसास कोई भी नहीं
नहीं
देना।
वारिसों के ऊपर होता है, वो तो सारा वारिस के हैं तो,
जी
है ना।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। यानी वार से, पे है वारिस, ये किसी जज पे, किसी सदर पे, वजीर आजम पे नहीं है कि मैं इसकी फांसी को कैंसिल करता हूं। रहम की अपील की उन्होंने और उसने रहम की अपील एक्सेप्ट कर ली और उसने कहा नहीं, अब इसको नहीं फांसी देनी। ऐसा नहीं है, बल्कि खून बहा या दियत जिसको हम कहते हैं, वो उस सूरत में होगी और क़िसास से उस सूरत में जान छूट सकती है किसी कातिल की, जब के उसके जो मकतूल है उसके वारिस कह दें कि हमने माफ किया है। माफ से मतलब है कि हम क़िसास नहीं लेंगे, हम दियत पे एग्री करते हैं, तो तब उसको क़िसास से उसकी जान छूट सकती है। अदरवाइज कत्ले अमद के जो सजा है वो है ही क़िसास। ठीक है, वारिस भी आस बल्कि कत्ल, बिल्कुल जी, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि वारिस बेचारे को कौन पूछता है। वो कातिल के घर वाले खत लिख देते हैं, सदर साहब हमारी रहम की अपील एक्सेप्ट करें हमारी, और वो कभी जी एक्सेप्ट उनकी मर्जी ये कर लें। भाई वो तो नहीं है ग्रीविंग पार्टी, उसके ऊपर तो नहीं गम टूटा है ना, जो वारिस है उनको कोई पूछता ही नहीं। ठीक है, वो असल तो ग्रीविंग पार्टी वो है, उनसे पूछा जाए कि क्या तुम चाहते हो कि तुम दियत ले लो या नहीं, और खुदा ना खास्ता कोई ये अग्री कर ले कि हम दियत ले लेते हैं, फिर तो देखें उनके ऊपर कितनी लानतान की जाती है। आप पैसे ले लिए इन्होंने, खून का बदला इन्होंने, वो पैसे खा लिए अपने इसके ऊपर, इसकी जान के ऊपर, और ऐसे नहीं, ये तो इस्लाम कहते हैं क्या, ये तो इस्लाम कहता है कि नहीं। और आप यहाँ पे भी ये भी एक चीज देखें, ये आपने अच्छा पॉइंट किया कि अगर रिच है कोई, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर जो कातिल की साइड है, वो हमारे मुल्क में कुछ ऐसे, वैसे इस्लाम के ऊपर नहीं कुछ भी अमल किया जाता, लेकिन यहाँ पे जब कोई बहुत ही शहजादे साहब ने, अमीर जादे ने किसी को कत्ल कर दिया, तो फिर उसके बाद वो इतना फोर्स करते हैं, इतना प्रेशराइज करते हैं उनको कि नहीं आप ये कह दो कि हमने तो खून बहा लेना है, दियत लेनी है, तो हमने क़िसास नहीं लेना। इतना उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वो अपनी जान बचाने की खातिर इस पे एग्री कर लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये तो उनकी फ्री विल होनी चाहिए, और सऊदी अरब में ये है कानून, और वहां पे कभी कभी ऐसा भी होता है, आखिर वक्त तक वो सामने होते हैं, वो रसा वो देखते हैं कि क़िसास के लिए कोई ले जाया जा रहा है। आखिर वक्त तक उनके पास चॉइस होती है कि वो ये कहें कि हम दियत पे राजी हैं, या थर्ड भी चॉइस है जो कि सिर्फ इस्लाम ने दी है, और वो ये कि माफ कर देना कि हमें ना दियत चाहिए तो ना हमें क़िसास चाहिए, अल्लाह ताला इसके बदले में हमें माफ कर दे। ठीक है, अच्छा जी, जी नाहिद सिद्दीकी, आप बताएंगी कि दियत अगर अता करनी है तो कितनी दियत है, क्या दियत होती है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और 100 ऊंट या,
उसकी कीमत होती है
शाबाश, ठीक है,
उसका सारा भी जनों का।
ठीक है, 100 ऊंट या उसकी कीमत अदा करना ये दियत होती है। इशरत आएंगी कि कत्ले खता क्या होता है?
जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम
वालेकुम।
सर जो गलती से होते हैं,
तो उसकी कोई एग्जांपल बताइए। अच्छा देखें जी, अदीला बताएं इसकी कोई एग्जांपल कत्ले खता की। अदीला है यहाँ पे? अच्छा आपकी लाइव, अच्छा जी अदीला, अब आप बताएंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी
उस्ताद, मुझे एक बहुत अच्छी मिसाल ऐसी आई थी, हजरत मूसा अलैहि सलाम से जो हुआ था,
जी
कि उन्होंने तो सिर्फ ऐसे ही मारा था ना, और
जी
जैसे आप किसी को थप्पड़ मारते हैं या किसी को जैसे कोई ऐसी चीज मारते हैं जिससे कत्ल हो नहीं सकता है,
जी
लेकिन जो है उसकी डेथ हो गई,
जी
तो वो कत्ले खता है।
सही, अच्छा मुझे ये बताइए जो कि बहुत कॉमन है, वो ये खुदा ना खास्ता किसी से एक्सीडेंट हो जाता है तो वो
उस्ताद वो भी जो है एक तरह से कत्ले खता में ही आएगा कि गलती से हुआ।
जी सही
उस्ताद, मुझे आपकी असली आवाज नहीं आ रही थी,
जी
गलती से ही हुआ, लेकिन अगर जैसे कुछ लोग तो इसमें, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि देखिए कुछ लोगों की तो वैसे भी कि वो चला ही तेज रहे
हाँ।
होते हैं, मतलब वो फॉलो नहीं कर
जी,
रहे होते
आप
हैं,
देखिए वो अलग बात है कि
है।
कोई नशे में चला रहा है गाड़ी, या कोई ऐसा चला रहा है कि लोग हैं और उनके ऊपर से गुजारता हुआ रोनता हुआ उनको जा रहा है या कुछ है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज ज्यादातर जो होता है कि किसी का चलाते चलते एकदम कोई आगे आ गया, कोई बंदा कोई कुछ है, उसका बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी, वो घर से किसी काम के लिए निकला था, एकदम कोई नीचे आ गया, तो मतलब गलती से ही है वो, कत्ले खता ही है। ठीक है। और इसके अलावा और भी कत्ले खता की सूरतें हो सकती हैं, मिसाल के तौर पे किसी ने मतलब शिकार कर रहा है वो, उसका निशाना खता हो गया किसी, कोई आपको पता है कि खुदा न खास्ता कोई, ये जो कई दफा आप सुनते हैं खबरों के अंदर भी, भाई वो बंदूक साफ कर रहा था, गन साफ कर रहा था, वो चल गई एकदम और वो जो है ना अपने ही बच्चे को लग गई, कभी कुछ इस तरह की चीजें आप सुनते हैं ना, तो ये भी कत्ले खता है। इसी तरह आप देखते हैं कि कभी ऐसा हुआ, कोई कोई माँ थी वो, आप कभी सुनते हैं कि कार सीट में बच्चे को डाला, खुदा ना हास्ता भूल के अंदर उसको याद, ऐसे नहीं कि जानबूझ के उसने किया, उसको याद ही नहीं रहा कि बच्चा अंदर बैठा था, वो बच्चा मर गया, तो ये सारी कत्ले खता की सूरतें हैं। ठीक है। स्क्विरल कार के नीचे आ जाए और मर जाए, नहीं वो तो कत्ल नहीं, ये तो इंसानी जानों का कत्ल है, ये जानवरों की उसका कत्ल नहीं है, चाहे स्क्विरल आ जाए या कोई जानवर आ जाए, वो उसकी ना कोई ऐसी कोई दियत या कुछ ऐसी चीजें नहीं है। ठीक है। कोई किसी को गुस्से में धक्का दे दे और वो मर जाए, जी सही है, कोई किसी को धक्का दे दे, कोई किसी को कोई खबर ऐसी सुना दे कि जिसमें उस दूसरे बंदे के ऊपर हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया, तो अब ये इसने कभी किया, अब इसका तो यानी एक उसका डायरेक्ट ना कोई इंटेंशन थी ना कोई उसका ये मकसद था कि इस तरह चलो अच्छा है ये कत्ल हो जाए ये मर जाए या कुछ ऐसी बात है। बाज दफा कोई खबरें भी दूसरे के लिए इतनी अचानक और ऐसी होती हैं कि वो जो दूसरे के लिए जानलेवा साबित होती हैं, तो इस तरह की चीज भी किसी को वो कर सकती है, जो ये कोई उससे कत्ल हो सकता है। ये कत्ले अमद और कत्ले खता में आपको दोनों में बहुत अच्छी तरीके से इसका डिफरेंस मालूम चाहिए कि कौन सा क्या है। अच्छा, और कौन रह गया यहाँ पे, ये नंबर कुछ हैं जिनके आगे नाम नहीं लिखा हुआ, मैं 732313 से कौन है?
सॉरी उस्ताद साहब, दोबारा नंबर बोलिएगा।
732313।
जी अस्सलाम वालेकुम, अमरीन डार।
जी अमरीन, और इस हदीस से हमें कसामा की हदीस से क्या पता चलता है, एक एटिकेट्स भी पता चलते हैं, मैनर्स पता चलते हैं, वो क्या पता चलते हैं?
जी साजा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो अब्दुल रहमान इब्न सहल अपने भाई के कत्ल के सिले में गए थे, तो वो उम्र में छोटे थे और उन्होंने बात करना चाहिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बड़ों की मौजूदगी में छोटा बात मत करे।
ठीक, शाबाश, कि बड़े की मौजूदगी में, इससे हमें बड़े अच्छे ये एटिकेट्स पता चलते हैं। आज दफा एक चीज देखते हैं कॉमन, और वो ये होती है कि मसलन है कि दो बड़ों के अंदर कभी लड़ाई हो जाती है, मिसाल के तौर पे माँ और दादी में, या में और फुफी में, या अपने बाप में और चचा के दरमियान, या इस तरह, तो आप देखते हैं उनके बच्चे उठ के तो अपने बाप की हिमायत के अंदर बोलने शुरू हो जाते हैं, और चचा से या जो है फुफी से या दादी से या किसी जो जिनके साथ भी उनका झगड़ा हो रहा है, तो उनके साथ ऊंची ऊंची वो बोलने शुरू कर देते हैं जो बच्चे होते हैं, और अब वो नहीं ये देखते कि ये बड़ों की बात हो रही है तो हम इसके अंदर ना करें, वो इंटरफेयर करें इसमें, बहुत ज्यादा हमें भी अपने बच्चों को ये बात सिखाने की जरूरत है कि जब बड़ा बोल रहा हो तो जो छोटे हैं वो इसके अंदर इंटरफेयर ना करें और वो आगे बढ़ के बात ना करें, अनलेस उनसे पूछ पूछा जाए या कहा जाए। मरियम, आप इस हदीस को समराइज करेंगी जरा कि ये हदीस क्या बताती है हमें? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
ऐसी कौन सी हदीस?
ये पहली हदीस 1085, ये क्या बताती है हमें?
यही बताती है कि जैसे अगर किसी का मर्डर हो गया है और वो अननोन है कि कोई एविडेंस नहीं है उसके बारे में कि किसने मर्डर किया है, और जो मर्डर के जो जो भी फैमिली वाले रिलेटिव्स या वो इल्जाम लगाते हैं कि किसी इस इन लोगों ने, ये जो यहाँ पर पाया गया है हमारा रिलेटिव, डेड रिलेटिव, इनमें से किसी ने मर्डर किया. वो मर्डर ही हुआ है, ऐसा नहीं कि खुदकुशी हो गया, लेकिन वो मर्डर हुआ है. तो फिर उन पर इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने किया है. तो फिर इन्होंने अगर इन्होंने 50 जो रिलेटिव जिनका डेड हुआ है, उन्होंने 50 लोगों ने अगर कसम उठा ली कि हमारा ही इन्होंने ही मारा है इस बस्ती वालों ने, तो उनको दिए देनी होगी. अगर तो वो कहते हैं कि हमने देखा नहीं और हम वो नहीं 50 कसम उठा सकते. जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए थे तो उन्होंने फरमाया था, हजरत अब्दुल्ला ने, तो आप सबने उससे उन्होंने कहा था कि आप कसम उठाएं, लेकिन उन्होंने कहा हमने देखा नहीं तो हम कैसे कसम उठा लें. तो फिर आपसे सबने फरमाया था कि ठीक है, यहूदी उठा लेंगे, बेशक वो काफिर हैं. उन्होंने कहा था वो तो कसमें उठाएंगे और झूठी होगी क्योंकि वो काफिर हैं. हमने फरमाया जो भी है. तो इसी तरह अगर सामने वाले वो कह दें कि हमने नहीं उठा, हमारे से नहीं किया 50 लोगों ने, तो फिर उनसे दियत माफ हो जाएगी. फिर गवर्नमेंट वाले पे करेंगे, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल बैतुल माल से अदा की थी.
तो यहाँ पे यहूदियों की क्या बात आ रही है, ये मैं पूछना चाह रही हूँ.
यहूदियों की क्या,
यहूदियों की क्या बात आ रही है यहाँ पे इस हदीस में?
यहूदियों की ये बात आ रही है कि वो वहाँ पर खैबर में उधर गए थे, दो सहाबी जो थे, हजरत मुहय्यस और हजरत अब्दुल्ला बिन सहल रजी अल्लाह अन्हा, वो गए थे वहाँ पर, अन्हा वहाँ पर खैबर में गए थे. तो यहूदी वहाँ रहते थे, इसीलिए उनके बाग में मारे गए. वो दोनों में से एक जो है वो कत्ल हो गए, तो यहूदियों पर ही शक जाता है क्योंकि वही रहते थे खैबर में वो.
सही, यही बात मैं आपको, जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा, बात मैं आपको बताना समझाना चाह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे थे ना कि बस्ती के ऊपर इल्ज़ाम, बस्ती के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई ये बस्ती जो है इसने, इसमें से किसी ने किया है कत्ल. तो वो आपने एविडेंस यहाँ पे देखे, इस हदीस से पता चलता है कि चूंकि वो बस्ती यहूद की थी तो इसलिए उनके ऊपर इल्ज़ाम आया कि इन्होंने कत्ल किया है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फिर फरमाया कि भाई वो इन लोगों ने, लेकिन ये कहा कि हमने देखा किसी को नहीं है, मतलब ये हमारा एक मतलब गुमान है कि हम ये इन्होंने ही कत्ल किया है. क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया था कि आप में से फिर चाहिए कि 50 आदमी ये कसम खा लेंगे यहूदियों ने मारा, तो फिर आपको दियत दी जाएगी. तो उन्होंने कहा हमने तो नहीं देखा. तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर यहूदी कसम खा लेंगे. ये अब आपको समझ आ रही जो ये यहूदियों के साथ क्या मामला हुआ था मुसलमानों का, जिस सिलसिले में हमने ये सारी डिस्कशन की है कि यहूदी कसम खा लेंगे, हमने तो, हमारे में से तो किसी ने भी नहीं मारा. तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो ऐसे लोग हैं, मतलब है काफिर लोग, मतलब है कि इनका, इनकी कसमों का क्या है, ये तो ऐसे ही कसम खा लेते हैं. जैसे हम लोग सोचते हैं कि लो जी आपने इनके ऊपर छोड़ दिया, वो तो कसम खा ही लेंगे, तो हैं ही करप्ट से लोग, तो वो करप्ट से लोग हैं तो वो तो कसम खा ही लेंगे. तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फिर इनके वालों को अपनी तरफ से दियत अदा कर दी, यानी गवर्नमेंट अब आ गई ना अंदर. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त की हुकूमत थे, ठीक है, तो उनको दियत अदा कर दी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. अच्छा जी, और कोई रह के जिस से मैंने नहीं पूछा हो अभी तक? जी नसरीन, आप बताएंगी कि मुहारबा क्या होता है? मुहारबा
जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि.
जी मुहारबा जो डाका डालने वाले डाकू होते हैं, तो उनको जो सजा दी जाए वो मुहारबा है.
जी तो डाकू, डाका कैसे, डाके और चोरी में क्या फर्क है? डाके और चोरी में क्या फर्क है?
डाका जो है वो अल्लाह एलान खुला, वो चोरी छुपके करनी.
जी सही है, सही है. अच्छा आप इसके अंदर एक बात, जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा, इसके अंदर एक, अच्छा चले मैं किसी से पूछ ही लेती हूँ. जी जाहिदा, आप बताएंगी कि मुहारबे में क्या क्या शामिल है? सिर्फ डाका डालना है या और भी कोई चीजें शामिल है इसमें?
जी अस्सलाम वालेकुम, मैंने पूछा आपने.
जी जी जी
जी, उसमें डाका भी डालना या कत्ल कर देना और माल लूट लेना. जी और उनका ये है कि मुहारबा करने वालों की सजा में ये है कि उनको या तो कत्ल कर दिया जाए या सूली चढ़ा दिया जाए या एक साइड से टांग और दूसरी साइड की बाजू काट दी जाए या जलावतन कर दिया जाए.
ठीक है, शाबाश। अच्छा, ये इसके अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो हमारे यहाँ कॉमन है जो चीज़ें, वो ये कि जो जैसे ये बसों को रोक के फिर उनको लूट लेते हैं सुनसान इलाकों, सुनसान भी नहीं, अब तो ज़रूरत होती, मतलब सिग्नल पे खड़े हुए, आपको पता है हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि वो कराची वगैरह में खास तौर पे कि वो गाड़ियों लेते हैं सेलफोन, वो नहीं उनको, और भी लोग खड़े हैं, पता नहीं किसी जमाने में होगा कि सुनसान जगहों पर लूटते होंगे, पीपल पूरी पूरी बसों को लूट लेते हैं खड़े करके, बसों में चढ़ जाते हैं, वो छुपे होते हैं रस्तों के अंदर, रोका और फिर डाकू अंदर आ गए, और कोई इसी तरह रेप की भी यही सजा है। तो ये चीज जो कि क्योंकि ये इस चीज का इतना प्रोपोगंडा किया जाता है, अल्लाह ताला माफ करे, और जब हमारे लोगों को नहीं पता होता ना तो हम भी इसमें हो जाते हैं कि हाय वाकई इस्लाम ने पता नहीं ऐसे ही किया, कि जब रेप की बात होती है तो फिर वो कहते हैं देखो ये इस्लाम तो कहता है चार गवाह लेकर आओ, चार गवाह लेकर आओ, तो देखो अब चार गवाह कहाँ से लाए जाए। वो तो बल्कि इस्लाम ने तहफ्फुज़ किया कि कोई किसी औरत के ऊपर इल्जाम ना लगाए, कोई किसी औरत पे इल्जाम लगाने से पहले चार गवाह लेकर आए, और अगर ऐसी ज्यादती की गई है तो फिर वो औरत ही खुद चली जाएगी और उसको चार गवाह लाने की जरूरत नहीं, और फिर उस आदमी के लिए ये सजा है। चूंकि क्लास शुरू हो चुकी है, इसे हम यहीं पे अभी रोकते हैं, और फिर इंशाल्लाह इस पे मजीद डिस्कशन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।